ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है, तुम बच्चे राजयोगी हो, राज ऋषि हो। फिर साथ साथ बाबा ने कहा तुम बच्चे योगी राज भी हो। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा बिंदी को याद करना बड़ा मुश्किल लगता है। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में तो बहुत बड़े बड़े चित्र आदि बना करके याद करते रहे। और फिर कई बच्चे कहते बाबा पहले आपने क्यों नहीं बताया है कि बिंदी का है। बाबा कहते हैं शुरू में क्यों बता दें, जैसे कोई आईएएस की पढ़ाई करने वाला है तो शुरू में थोड़ी उसको आईएएस की पढ़ाई का पूरा बता देंगे, धीरे धीरे बता देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष ध्यान रखना है, बहुत साधारण रहना है, इच्छा मात्रम अविद्या रहना है और बहुत ही सिंपल रहना है, कोई भी प्रकार की लालच नहीं करनी है, ये खाऊं वो खाऊं ऐसा खाऊं। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चों की सेवा क्या है, जो दलदल में फंसे हुए उनको निकालना है, लेकिन दलदल में फंसे हुए को निकालने का काम भी वही कर सकता है जो दलदल से निकला हुआ होगा। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 16 जून 2026। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम अभी सच्चे सच्चे राज योगी हो, तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो, तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र, राज ऋषि माना ही पवित्र। आज का प्रश्न है तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे। तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे। इसका उत्तर है जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। जो खुद ही दलदल में फंसा है वो दूसरे को कैसे निकालेगा, जब फंसा हुआ खुद ही निकालते टाइम खुद ही फंसता जाता ना। तो बाबा कहते हैं जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे, दलदल से निकालने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, ये ख्याल या लालच ना हो, तुम पूरा ही बनवा में हो। तो बाबा दोनों बातें बता रहे, बाबा कहते ये ख्याल भी ना हो इच्छा भी ना हो, क्यों, क्योंकि तुम इस समय बनवा में हो, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, ये लालच ना हो, तुम पूरा ही बनवा में हो, इस शरीर को भी भूले हुए हो। बनवा अर्थात शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ, ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। आज का गीत है तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यास से हम। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। शुरू शुरू में जब ये गीत बजते थे ना तो बाबा बच्चों को कहते थे ये जो गीत बजा है इसका अर्थ बताओ। हमें याद आता है कि दादियाँ भी जब ये गीत बजता था तो दादियाँ भी पूछती थी इसका अर्थ बताओ, एक गीत आता ना हमारे तीर्थ न्यारे हैं, तो दादी पूछती थी हमारे तीर्थ कौन से हैं, हमारे तीर्थ सभी सेंटर्स हमारे तीर्थ हैं, ऐसे ही बाबा भी दादियाँ भी पूछती थी। कोई समय गीत जब बजाया जाता है तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे, अब द्वापर से भूले हैं ये रॉन्ग है, अब बताओ तुम कब से राह भूले। बाबा कहते ये बताओ तुम कब से राह भूले हो। कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से, अब उसमें ना हम राह भूले हुए, तो बाबा पूछते हैं कब से भूले हैं, जो कहते द्वापर से भूले वो हाथ खड़ा करो, कोई भी नहीं है, राह को भूले हैं द्वापर से वो हाथ खड़ा करो, हाँ 8-10 और बहने, और जो कहते हम सतयुग से राह को भूले वो भी आधे आधे, कोई तो कहते हम भूले ही नहीं, बात ही करता हूँ, है ना, ऐसा है ना। बाबा ने दो करेक्शन की हैं, एक्चुअली सतयुग में तो राह की जरूरत नहीं है, लेकिन राह चाहिए या नहीं चाहिए वो भी तो पता नहीं है ना, तो बाबा ने कहा अब बताओ तुम कब से राह भूले हो। कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से, जो कहते हैं द्वापर से है हाथ खड़ा करो, फिर से करो हाथ खड़ा, जो कहते हैं द्वापर से, बाबा कहते वो रॉन्ग है, देखो टाइटल बता भी दिया रिजल्ट में, जो कहते हैं बाबा बच्चों से बहुत रमणीक ढंग से बात करते थे, रॉन्ग भी नहीं है लेकिन बच्चों को और एक्टिव करने के लिए बाबा कहते हैं जो कहते द्वापर से भूले वह रॉन्ग है, सतयुग से राह भूले हैं, राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला। सतयुग में तो राह की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा कहते सतयुग में पता ही नहीं है ना, इसलिए सतयुग से राह भूले हैं, राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को कोई जानते नहीं, ना राह की जरूरत है ना जानने की जरूरत है, वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं, भूलना भी ड्रामा में नूंद है, फिर अभी राह बताने आए हैं, कहते हैं ना प्रभु राह बताओ, हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हुए हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं, बाबा कहते प्रश्न क्यों पूछते हैं, साकार में भी बाबा मुरली के टाइम बच्चों से प्रश्न पूछते थे, जब मुरली पूरी होती थी ना, जो इस समय उस समय दीदी का कमरा था, पहले मम्मा का कमरा था, फिर ऑफिस जो बाहर आते ना ऑफिस के सामने जो कमरा, पहले मम्मा का कमरा था फिर दीदी का कमरा था, मुरली के बाद बाबा उस कमरे में आते थे, तो सब दादियाँ और दादे सब वहाँ बैठ कर के मुरली की चिट चैट करते थे, बाबा भी प्रश्न पूछते थे और दादियाँ भी बाबा से प्रश्न पूछते थे, तो बाबा कहते ये प्रश्न क्यों पूछते, बुद्धि को चलाने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए, ये ज्ञान ही निराला है ना, ज्ञान का सागर बाप ही है, बाप सनूक समझाते हैं, ज्ञान का सागर सुख का सागर मैं ही हूँ, तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन एक बाप ही है, ये तो भक्ति वाले भी जानते, भक्ति वाले भी मानते हैं कि पतित पावन कौन है, पतित पावन भी एक बाप है, और तुम बच्चे भी जानते हो, ये तो भक्ति वाले भी मानते हैं, पतित दुनिया है ही पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम, अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, बाप प्यार का सागर है तभी तो सब उनको फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु वे कौन हैं कैसे आते हैं ये भूल जाते, परमात्मा पिता है प्यार का सागर है, कौन है कब आएगा कैसे आएंगे बाबा कहते ये नहीं जानते हैं, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं, परंतु वे कौन है कैसे आते हैं ये भूल जाते हैं, 5000 वर्ष की तो बात है ना, बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग में सदगति फिर दुर्गति कैसे होती है, बाबा भी बच्चों से प्रश्न पूछे, सतयुग में जबकि सदगति है तो फिर दुर्गति कैसे होती है, कौन बताए? बाप ही आकर के समझाते हैं, द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं, तुम समझते हो ये कोई नई बात नहीं है। बाप कलप कलप आते हैं, अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते। बाबा जब भी बात करते थे, बाबा कहते थे मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ, मैं मनुष्य का शरीर नहीं देखता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं निराकार बाप आत्माओं से बताते हैं, कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार ये बना हूँ। हालांकि गीता में बताया है कि तुमने अनेक बार पाठ बजाया फिर भी बजाओगे, लेकिन समझते नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि मैंने अनेक बार पाठ बजाया है। तो बाबा कहते हैं तुम समझते ये कोई नई बात नहीं है, बाप कलप कलप आते हैं, अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं, कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते, ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कौन सी बात कि अनेक बार ये बना हूँ और पाठ बजा। अभी कलप का सारा ज्ञान संगम पर ही मिलता है, लेकिन पहले तो पता नहीं था ना कि ये पाठ बजाया फिर बजाएंगे। ड्रामा को भी वे नहीं जानते, करके लाखों वर्ष कहें फिर भी तो ड्रामा है ना। कहीं ड्रामा लाखों वर्ष का है, सृष्टि की आई लाखों वर्ष से, बाबा कहते फिर भी है तो ड्रामा ना, फिर भी है तो ड्रामा ना, ड्रामा रिपीट होता है ये तो कहेंगे। ये भी कहते हैं कि ड्रामा रिपीट होता है ये तो कहेंगे ना। ये ज्ञान बाप ही बच्चों को सन्मुख देते। बाबा आए, बाबा ने ज्ञान बच्चों को सन्मुख दिया, फिर बच्चे बाबा का ज्ञान दूसरों को देते हैं। ये ज्ञान बाप बच्चों को सन्मुख देते, मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए, क्या बनाया, ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का ये बच्चा भी है। अब शिव बाबा क्या बता रहे, ये ब्रह्मा जो है शिव बाबा का बच्चा है। और कौन है, और कौन है? बाबा का बच्चा भी है, राइट हैंड भी है, और कौन है? शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा का ये बच्चा भी है, वन्नी, वन्नी मीन्स स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया। शिव बाबा ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं। तो बाबा कहते मेरी वन्नी स्त्री हैं, लेकिन बहनें बहुत हैं, तो बहनों को संभालने के लिए बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा के साथ सरस्वती को भी मददगार बनाया। अभी सरस्वती माँ का भी मास चल रहा है ना, मम्मा का दिन भी आने वाला है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया कि बच्चों की संभाल करो। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, ये है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, जिनको राजयोग सिखलाया वह क्या बने, वह राजाएं बने। राजयोग सीखा और राजयोग से जाकर के विश्व महाराजन बने। तो बाबा कहते जिनको राजयोग सिखलाया वह राजाएं बने। 84 जन्मों में आए। बाइबल कुरान वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। पहले भक्ति में तत्वों से योग लगाते रहे ना, बाबा कहते अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजऋषि हो, और कौन हो, राजयोगी हो, और कौन हो, तुम राजयोगी राजऋषि अर्थात, और कौन हो, बोलो बताओ, योगी राज। बाबा ने तीन टाइटल दे दिए। तुम अभी राजयोगी राजऋषि हो अर्थात योगी राज। ऐसे योगी जो जाकर के विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी बाबा बता रहे हैं, योगी कौन हो सकता है? योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो, बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने पहला क्या कहा कि पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है, जो पवित्र बनते हैं वही योगी कहलाते हैं। योगी नाम ही उनका है। तुम सब कौन हो अब बताओ, तुम सब कौन हो? बाबा कहते तुम सब हो राजयोगी। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात, राज ऋषि भी हो राजयोगी भी हो, ये कौन है? बाबा कहते ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही है। दूसरे को समझाएंगे तो समझेंगे नहीं, ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्टूडेंट भी हो गए ना, पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट भी हो गए। स्टूडेंट को कब टीचर भूलेगा क्या? बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, बाबा कहते तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कभी क्या टीचर को भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती हैं। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को क्यों भूल जाते हो? बाबा बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने पढ़ाने वाले टीचर को क्यों भूल जाते हो? भगवान पढ़ाते हैं ये समझें तब तो बहुत नशा चले, भूल जाते ना कि भगवान हमको पढ़ा रहे, भगवान हमारा पिता, वही हमारा टीचर। बाबा कहते ये पक्का हो तब तो नशा चले, भगवान पढ़ाते हैं ये समझे तब तो नशा चले। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए ये राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ना तो फिर भी होता है, पढ़ना तो है ना, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि भी सीखनी पड़े। अब दूसरा राग, सतयुग में जाएंगे तो वहाँ भाषा सीखेंगे लेकिन नेचुरल, एक सेकंड में सीख जाएंगे, कोई खास टाइम नहीं देना पड़ेगा। आजकल तो बहुत टाइम देते हैं ना भाषा सीखने में, राज विद्या पढ़ने में, परंतु वहाँ पर जब पढ़ते हैं कोई टाइम नहीं लगता है। तो बाबा कहते राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि भी सीखने पड़े। तुम समझते हो सतयुग में हम ये राह भूलने शुरू करते। बाबा ने कहा ना ये राह कब से भूले हैं, तो सतयुग से। तो बाबा ने कहा सतयुग से ये राह भूलना शुरू होता है। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम ये राह भूलना शुरू करते हैं, फिर एक एक डाका, डाका जैसे ना सिंधी में कहते हैं, एक एक स्टेप, एक जैसे सीढ़ी उतरते ना, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी ऐसे। तो बाबा ने कहा फिर एक एक ढाका पौड़ी स्टेप, एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है कैसे हम चढ़ते, कैसे उतरते हैं, फिर कैसे हम चढ़ते, तुमको ये सारा याद है कैसे हम चढ़ते हैं कैसे हम उतरते हैं। ये सीढ़ी भी अच्छी रीति याद करो, 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है। अब बाबा ने राज बताया क्यों सीढ़ी याद करो, हम क्या थे फिर कैसे धीरे धीरे नीचे उतरे, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हमको वापस जाना है। तो खुशी होती है, ये बेहद का नाटक है, आत्मा कितनी छोटी है, पार्ट बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहती हैं बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाए, जब थक जाते ना कहते रास्ता बताओ राह बताओ तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है, वहाँ कोई हंगामा नहीं है। यहाँ तो कई प्रकार के बाहर के हंगामे होते हैं, प्रकृति का हंगामा है, कभी गर्मी है कभी ठंडी है कभी आंधी है तूफान है। बाबा कहते हैं वहाँ पर कोई भी हंगामा नहीं है, आत्मा को शांति है। शांति के दो स्थान है, कौन से दो स्थान है? शांति के दो स्थान हैं, एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम। दुख धाम में अशांति है, ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम से ले जा रहे, डायरेक्ट सुख धाम नहीं ले जाएंगे। बाबा कहते पहले कुछ भी कोई कहे शांति धाम तो जाना ही है, और शांति धाम में जाने से पहले कौन सी जगह जाना है, धर्मराजपुरी में भी जाना, धर्मराज को सल्यूट मार के जाना। कोई तो सल्यूट मार के जाएंगे, कोई को धर्मराज खुद सल्यूट मारेगा, और कईयों को थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब भी चुक तो करना है। तो बाबा कहते हैं तुम सुख धाम में ही, तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है, वहाँ कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। आत्मा के दो स्थान हैं, शांति के दो स्थान हैं, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है, ये पढ़ाई है। तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम वाया शांति धाम से ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार ही नहीं है कि हम सुख धाम में कैसे जाते हैं, शांति धाम से जाएंगे। बाबा कहते जाना है तुम बच्चों को, तुमको कहने की दरकार नहीं है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, फिर जाना है, ये खुशी है ना, शांति की खुशी नहीं है। किस बात की खुशी है, वहाँ और धर्म वालों को जो लास्ट में आते उनको शांति की खुशी है, बच्चों को शांति की खुशी नहीं है। बाबा कहते तुम्हें खुशी है सुख के, वहाँ जा कर के बहुत अच्छा पाठ बजाएंगे। जो कहते हम जाके शांति में बैठ जाएं वो हाथ खड़ा करें, है कोई? शांति में तो बैठ ही नहीं सकते, पाठ बजाना ही है। तो बाबा कहते हैं खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको बहुत मजा आता है, जिसको पाठ बजाने में मजा आता है ना, बाबा के बच्चे पाठ बजाए बिना नहीं रह सकते। सारे कल्प में तो बजाएंगे, जब संगम पर आते तो कुछ ना कुछ सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, योग करना है, पुरुषार्थ करना है, तो पाठ के बिना तो रह नहीं सकते। इसलिए पाठ बजाने में बहुत मजा आता है, खुशी होती है। बाप जानते हैं बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, बाबा ने इसको भी करेक्ट किया है, ये अक्षर भी रॉन्ग है। अब कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, तो बाबा कहते ये अक्षर भी रॉन्ग है, नहीं, हम बाप को याद करते हैं तो विकर्म विनाश होंगे, शांत तो मन रह ना सके। कितनी बड़ी बात कि शांत तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा ना, तो शांत तो मन रह ना सके, कर्म बिगर रह नहीं सकते हैं। बाकी महसूस तो आती है, हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। ये तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं, तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में। अब आप देखो जिनको बहुत पैसे हैं वो सबसे ज़्यादा दुख में, उनको चिंता रहती है पैसा कहाँ डालें, किस बैंक में डालें, क्या होगा, कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ नुकसान होगा। तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, सबसे ज़्यादा पैसे वाले, सबसे ज़्यादा ऊंची पोजीशन वाले, उनके सामने सबसे ज़्यादा टेंशन है। तो बाबा दुनिया में भले वो कहें कि हम सुखी हैं, परंतु बाबा कहते सबसे ज़्यादा दुखी वो है। जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में है, सन्यासी तो घर बार छोड़ दे ना, वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा को जो शांति ना, वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा को जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पार्ट बजाना ही है, यहाँ आते ही हैं कर्म करने के लिए। कर्म में रहते हो, कर्म तो आत्मा को करना ही है, कर्म तो आत्मा को जरूर करना है, कर्म में तो आत्मा को आना ही है, पार्ट बजाना ही है। तुम जानते हो ये समझाने बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवानों वाच, तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा है, परम आत्मा माना परम परमात्मा। हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा है, परम आत्मा माना परमात्मा। उनको ये आत्मा बुलाती हैं, वह बाप ही सर्व का सदगति दाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत। सबसे बड़ी मेहनत किस में है? देही अभिमानी बनने में। तो बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कलप से जो खाद पड़ती हैं वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सच्चा सोना बनना है, जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनते हैं। तुम असल में कौन थे? सच्चा सोना थे। बाबा कहते तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कौन सी बात? कि हमने पार्ट बजाया है। अब हम जाते हैं, कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाएंगे? अब हम जाते हैं पियर घर। पियर घर कौन सा है? सतयुग हमारा पियर घर है। अब हम जाते पियर घर, जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। यहाँ भारत से विदेश में गए नौकरी करने गए, जब अपने देश में आते हैं तो उनको खुशी होती है, हम देश में जाएं, अपने बच्चों के लिए ये ले जाएं वो ले जाएं। तो बाबा भी हम बच्चों के लिए क्या लाते हैं? जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है। तुम्हें भी खुशी है। किस बात की? तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है, बेहद के बाप की सौगात। कौन सी सौगात है? बेहद के बाप की, स्वर्ग की सौगात है। बेहद के बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते। अब सन्यासी क्या कहेंगे? हम मुक्ति में जाए। और राजयोगी क्या कहेंगे? हम जीवन मुक्ति में जाए। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ। और सन्यासी क्या कहेंगे? कोई मरेगा तो जीवन मुक्ति वाले क्या कहते? और धर्म वाले अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी क्या कहेंगे? सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। अब बाबा कहते ज्योति ज्योत समाया वो तो रहने का स्थान है, घर है, घर में थोड़ी कोई समा जाता है। जिसमें सब मिल जाएंगे वह तो रहने का स्थान है, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। बाकी ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाए। कोई ज्योति कहता है, कोई आग कहता है। बाबा कहते ना ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाए, वो तो रहने का स्थान है, वहाँ पर जाकर के शांति में रहती हैं। ब्रह्म महातत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं, बाप भी वहाँ रहते हैं, आत्माएं भी रहती हैं और बाप भी वहाँ रहते हैं। वह भी बिंदी हैं। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है ना, बहुत हैं कहेंगे बाबा अभी भी नए नए आते ना, कहते याद भूल जाते हैं। बाबा कहते याद क्यों भूलते हो? बोलो ना हमारा बाबा से प्यार, याद मीन्स बाबा से प्यार। तो बाबा कहते प्यार में कोई भूलता है क्या? बहुत बच्चे कहते बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदु रूप को कैसे याद करें? आधा कलप तो बड़े लिंग रूप को याद किया, वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो न सके। अब बिंदी की पूजा करेंगे क्या करेंगे? एक बूंद डालेंगे वो भी साथ में बह जाएगी। तो बाबा कहते बिंदी की तो पूजा नहीं होती है, बिंदु रूप में स्थित होना है ना। अब बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो ना सके, इनका मंदिर भी कैसे बनाएंगे? बिंदी का मंदिर बना सकते हैं, इनका मंदिर भी कैसे बनाए, बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते, चाहे कितने भी छोटे बनाए लेकिन होता तो है ना रूप, शिवलिंग बहुत बड़ा, शालिग्राम इतना भी होगा उसके शिवलिंग की भेंट में छोटा है लेकिन है तो सही ना उसका रूप। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया, अब कई बच्चे बाबा को कहते थे बाबा पहले आपने क्यों नहीं बताया कि आत्मा बिंदी है, बिंदी को याद करना है, परमात्मा बिंदी है, तो बाबा उसका जवाब दे रहे हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया परमात्मा बिंदी मिसल है, बाप कहते हैं उस समय ये बताने का पार्ट ही नहीं था। स्कूल में बच्चा जा रहा है, पहली क्लास पढ़ा है, ABC पढ़ रहा है, उसको जा कर के बड़े हाई लैंग्वेज सिखा देंगे वो समझेगा, तो बाबा कहते हैं ये पहले बताने का पार्ट ही नहीं था। अरे तुम IAS के ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो, बाबा जवाब देने से पहले बच्चों से पूछते हैं बताओ पहले जब स्कूल में जाते हो तो शुरू में क्यों क्यों नहीं ICS शुरू कर पढ़ते हो। पढ़ाई के भी कायदे हैं ना, ऐसी कोई बात पूछे तो तुम कह सकते हो। कई बार बाबा बच्चों को कहते थे, शुरू शुरू में बहुत आते थे, बहस करते थे, तो बाबा बच्चों को कहते थे और उनको कोई भी प्रश्न पूछे जवाब नहीं आता है तो स्पष्ट जवाब तो आता है लेकिन स्पष्ट नहीं कर सकते, तो उनको को हम अपनी बड़ी दीदी से पूछेंगे या बाबा से पूछ के बताएंगे। लेकिन कई इतने देह अभिमानी हैं, इतने देह अभी भी हैं, उनको कहो ज़्यादा नहीं बताओ, वो नहीं सुनेंगे, बहस करते रहेंगे और बहस में ना खुद समझेगा ना समझने वाला समझेगा। तो बाबा कहते हैं कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं या हमारे से बड़ी टीचर हैं उनको लिख कर पूछते हैं, बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। कई बातें बाबा से पूछते थे, बाबा कहते समय आने पर सब मालूम पड़ेगा, समय आने पर बाबा बताएंगे। तो आज भी बाबा क्या बता रहे हैं कि आगे चल करके बताएंगे, वह कहेंगे आगे चल समझ लेंगे, एक ही टाइम तो सभी नहीं सुनाएंगे ना, ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है वह बाप बैठ सार समझाते हैं, ये भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। बाबा कहते हैं हमको नफरत नहीं करनी है, द्वापर से बहुत पढ़े हैं, फिर जब हम द्वापर में आए हैं, क्योंकि ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी पढ़ने ही पड़ेंगे, ये भक्ति का पाठ बजाना ही होगा। ये तो अभी हम ज्ञान में हैं, भक्ति में तो पाठ बजाए ना, तो बाबा कहते भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, पतित बनने का पाठ भी बजाना है, भक्ति का पाठ भी बजाना है, भक्ति भी बहुत करनी है, वेद शास्त्र आदि सब कुछ पढ़ना है, फिर पतित बनना है, फिर बाबा आएंगे पावन बनाएंगे, पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए, बाहर से तो बहुत खूबसूरत है, जैसे रुंड के पानी का मिसाल देते हैं, रुंड समझते ना, रेत होती है उसको क्या कहते हैं, मृग तृष्णा, रेत होती गरम गरम होती चमकती हुई, राजस्थान में पहले भी कई स्थानों पर ऐसी रेत चमकती हुई, तेज धूप में चमकती है रेत तो लगता है पानी चमक रहा है, तो जो मृग है पानी की तलाश में वहाँ जाता है और वहाँ तो गरम गरम रेत होती है। तो बाबा कहते हैं जैसे रुंड के पानी का मिसाल देते हैं, भक्ति भी बहुत सुहेनी आकर्षक बहुत है। बाप कहते हैं ये तो जैसे कि रुंड के पानी के समान है, मृग तृष्णा समान है, इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने के लिए फिर खुद फंस पड़ते। कई बार ऐसे होता है कोई सागर में डूब रहा है, दूसरा जाता निकालने के लिए, उसको निकालते निकालते खुद भी डूब जाता है। भक्ति ऐसे डूबन में भी डूबर मीन्स दलदल, दलदल में निकालने जाते, नीचे गिरते जाते, फिसलते जाते तो खुद भी फंस जाते। तो बाबा कहते हैं जाते हैं निकालने के लिए, फिर इस दुब्बर में फंस जाते हैं, फिर निकालना भी मुश्किल हो जाता है, एकदम फंस पड़ते हैं। जाते हैं औरों को निकालने के लिए, फिर खुद भी फंस पड़ते हैं, ऐसे बहुत फंस पड़े। शुरू में हुआ ना, बहुत आए गए दूसरों को निकालने और खुद भी उनके साथ चल पड़े, ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्यवश सुनंती कथंती औरों को निकाल बनती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते। कई ऐसे भी आए बाबा के बच्चे, बाबा को कहा बाबा हम जा रहे हैं लौकिक वालों की सेवा करेंगे, इनको ले आएंगे। लौकिक की सेवा तो क्या कि वहाँ गए और वहाँ के वहाँ ही रह गए, वापस ही नहीं आए। तो इसलिए बाबा को कहना पड़ता है जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद भी फंस पड़ते हैं, ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्यवश सुनंती कथंती औरों को निकाल बनती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे, अब बाबा को कहना पड़ता है, कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतने अच्छे थे, बाबा की बहुत सेवा करते थे, निश्चय बुद्धि थे, फिर गए और संशय बुद्धि बन गए, कितना समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता था, फिर उनको निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाप को भूल जाते हैं। तो दुब्बन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, दुब्बन समझते ना दलदल, तो दुब्बन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी दामन की, हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले। और फिर बाबा बता रहे अपने बच्चों को अपना चार्ट देखना है कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती। अभी माया की भी दलदल चल रही है, फिर भी फंसे हुए, लेकिन कई बच्चे उससे निकलते जाते तो खुशी होती जाती है। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना खुशी होती है। जो खुद निकला हुआ होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरों को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई बहुत तीखे होते, बाबा कहते जो तेज होगा निकला हुआ होगा उसके पास शक्ति होगी, दूसरों को निकालेंगे। फिर बाबा ने उदाहरण दिया, बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है। अब भील कहाँ है, अर्जुन कहाँ है, बताओ भील कहाँ है, अर्जुन कहाँ है? बाबा ने कहा अर्जुन है जो यहाँ रहने वाले, भील हैं जो बाहर रहते हैं। कैसे भील भी होशियार हो सकते हैं? तो बाबा ने कहा भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना, अर्जुन है साथ रहने वाला। अर्जुन के लिए बताया ना, पूरा टाइम श्री कृष्ण के साथ था और कितना कंफ्यूज होता था, श्री कृष्ण उसको कितना गाइड करता था। तो बाबा कह रहे अर्जुन है साथ रहने वाला, और साथ रहने वाले हैं अर्जुन एक को नहीं जो बाप का बन करके बाप के साथ रहते। जो अर्जुन है वो हाथ खड़ा करें, सारे अर्जुन हैं, कोई कहाँ भी रहे सब अर्जुन है, जो बाप का बन करके बाप के साथ रहते हैं उनको अर्जुन कहा जाता है। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वालों की रेस कराई जाती। कई तो बाबा के साथ बाबा के घर में रहते हैं, कोई परिवार में रहते हैं। बाबा कहते परिवार में रहने वाले भी सबसे आगे जा सकते हैं, तो बाबा कहते उनकी रेस कराई जाती है। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वालों की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। अब बाबा क्या बता रहे हैं, भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की, एक नहीं, बाहर हालांकि परिवार संभालते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन इतना अच्छा पुरुषार्थ है वो साथ रहने वालों से भी आगे जा सकते हैं। बाबा कहते तो रेस है, कोई भी जा सकता है। तो बाबा कहते हैं दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की है, तीर भी ये ज्ञान का है, हर एक अपने को समझ सकते हैं। हम बाप को कितना याद करते हैं, कोई याद करते हैं और कोई तो याद, कोई को तो याद ही नहीं आती है। बाबा बता रहे हैं हर एक अपने को समझ सकते हैं, हम कितना बाप को याद करते हैं और कोई को तो याद ही नहीं आती। अच्छी अच्छी चीज़ पहनने की, खाने की लालच तो नहीं रहती है, अब क्यों नहीं याद कर सकते, ये खाऊं ये खाऊं, ये चीज़ पहनूं, इसको देखेंगे ये चीज़ कहाँ मिलती है, कहाँ से मिलेगी, इसको कहाँ से लें, या तो मंगाते रहेंगे या फिर इधर उधर करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं अच्छी अच्छी चीज़ पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती है, यहाँ अच्छा पहनेंगे तो क्या होगा। बाबा तो देते हैं अच्छा अच्छा पहना, अच्छा खाओ, लेकिन जो लालच से इच्छा से करते हैं ना, इच्छा के कारण बहुत उनको इधर उधर हाथ मारना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। बाबा ने खुद भी अपने को बहुत साधारण रखा और फिर बाबा ने बच्चों को साधारण रहने का भी सिखाया। दादियाँ किस प्रकार से इतना रॉयल रूप में साधारण रहती थी, तो बाबा कहते हैं यहाँ अगर अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। हमको तो यहाँ वनवा में रहना, वनवा समझते हैं ना, लड़की की शादी से पहले उसको कुछ दिन सिंपल कपड़े डालते हैं, फिर शादी के बाद फिर अच्छे डालते हैं ना, यहाँ तो हमको वनवा में रहना है। बाप कहते तुम अपने शरीर को भी भूल जाओ, ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। स्वर्ग में हर चीज़ भरपूर होती है, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहना, क्यों, दो चार बातें बाबा ने बताई। जेवर पहनेंगे तो बुद्धिमान चली जाएगी, कोई गुम हो गया तो पूरा टाइम, कई बार माताएं आती हैं ना भूल जाती हैं, इधर छोड़ा फिर कहेंगे हमारी ये चीज़ गुम हो गई, फिर इधर ढूंढेंगे उधर ढूंढेंगे, फिर अनाउंसमेंट कराती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाबा के घर आते तो सिंपल होके रहो ना। बाप कहते तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहना, ऐसा क्यों कहते हैं, इसके भी अनेक कारण हैं। बाबा क्यों कहते हैं, कोई का जेवर गुम हो गया तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आई है, सुना माता है, आती है ना गुम करती है, घर में ज्ञान में नहीं होते हैं, कहेंगे मेरा गुम हो गया तो सुनेंगे नहीं, नहीं नहीं तुम तो बीके को दिया, और दिया है नहीं किया है, गुम कर दिया है, पहला कारण बाबा बता रहे हैं। और कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आई है, फिर चोर चकार भी रास्ते में छीन लेते हैं। आजकल क्या है, सोना डाला होगा खूब, रास्ते में चोर भी छीन लेते हैं, चोर भी कई प्रकार के हैं, ऐसे ऐसे चोर हैं पता भी नहीं पड़ता है ना, ऐसे करेंगे सुंगा देते हैं, फटाफट लूट के चले जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। तो बाबा ने कहा फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयाँ भी बहुत लूटने वाली निकली, बहुत सी माताएँ हैं, मॉल में जाती हैं, शॉप में जाती हैं, ज्वेलरी शॉप पे जाती हैं, ऐसी मीठी मीठी बातें करती हैं, सैंपल देखते देखते वो चोरी करके भाग जाती है, फिर आजकल तो उनको किस तरह से सहज रीति से पकड़ भी लेते हैं, बहुत निकले हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सावधान रहना है, आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकली हैं, फीमेल भी डाका मारती हैं, फीमेल तो डाका मारने में अज्ञानी, डाका मारने में बहुत होशियार हो गई हैं, फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल तो देखो क्या है, तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल ही वैशाल्य है, हम यहाँ शिवालय में बैठे। अब बताओ जो शिवालय में बैठे वो हाथ खड़ा करो, शिवालय में बैठना मीन्स शिव बाबा के साथ। सतयुग में तो जाएंगे शिवालय में, परम धाम में भी जाएंगे, लेकिन अभी संगम युग पर भी हम शिवालय में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं सभी का शुभ, आप सभी का शुभ संकल्प साकार हो गया। तो अभी तो बाबा बता रहे थे आजकल माइयाँ भी बहुत लूटने वाली निकली हैं, फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल तो देखो क्या है, तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैशाल्य है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं, शिव बाबा के साथ वह सत्य हैं, चैतन्य हैं, आनंद स्वरूप हैं, आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है, दुनिया में कहेगा मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन बाबा कहते तुम्हारी आत्मा क्या कहेगी। तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे। अब हम क्या कहेंगे, पहले बाबा ने कहा राजयोगी राजऋषि, अभी बाबा ने कहा हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये याद रहता है ना, परंतु हम आत्मा भाई भाई हैं ये भूल जाते, ये मैं हूँ, ये मेरा है। बाबा कहते ये तो याद रहता है, हम आत्मा भाई भाई हैं ये भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना है, यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। अब ब्रह्मा बाबा भी बताते हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। फिर बाबा को नशा है, पहले मैं सुनता हूँ। बाबा को तो हमेशा आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा पहले सुनते हैं। वैसे भी आप देखते हैं ना, जब ट्रांसलेशन करते हैं आधे सेकंड एक सेकंड का अंतर होता है, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं एक सेकंड का अंतर, फिर इंग्लिश टू दूसरी लैंग्वेज में करते हैं तो उसमें भी एक दो सेकंड का अंतर पड़ता है। तो बाबा भी जब बोलते शिव बाबा तो पहले सुनते हैं ब्रह्मा बाबा, पहले मैं सुनता हूँ, भले मैं भी सुना सकता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते कि मैं क्यों नहीं सुना सकता, शिव बाबा मेरे को पहले सुनाता तो मैं भी सुना सकता हूँ। परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ, तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं ये नहीं समझा सकता, ये तो बहुत कुछ समझा सकता है, लेकिन सदा ध्यान रखे समझाने वाला शिव बाबा है। परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ, तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। साकार में बाबा भी बहुत विचार सागर मंथन करते थे, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है, जैसे तुम करते वैसे मैं भी करता हूँ। अब ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे तुम बच्चे विचार सागर मंथन करते हो वैसे मैं भी करता हूँ। यहाँ तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे, लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं, अगर नहीं तो फिर बाबा कैसे पहले नंबर में जाएंगे। ब्रह्मा बाबा अपने को गुप्त रखते, इतना गुप्त रखते हैं, बाबा कभी कहेंगे मेरे को भी तूफान आते, बाबा को थोड़ी आते, बाबा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो बाबा कहते हैं विचार संग मंथन करना बच्चों का काम है, जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ। नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे, अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य हिस्सा। पहला है मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवा में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पाठ बजाते हुए कर्म करते अपनी शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। आज का वरदान रोहाव और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रोहाव और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक हैं। एक है ईश्वरीय रोहाव, ईश्वरीय नशा, रोहाव मीन्स नशा। एक है ईश्वरीय रोहाव और दूसरा है रहम। अगर रोहाव और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो रहम और रुहाव दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में भी इन दोनों गुणों की समानता दिखाती, रहम भी दिखाती और वो नशा भी दिखाते ना। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। दूसरा, अच्छा उसके बाद है स्लोगन, बाप के प्यार के पीछे। पहले वरदान सुना, अभी हम स्लोगन सुन रहे हैं। स्लोगन, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प नौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प नौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। अव्यक्ति इशारे, जो टाइटल चल रहा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उसकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। अच्छा, ओम शांति। आज से भट्टी का ग्रुप आ रहा है। भट्टी के जो भाई बहने आज पहुँचे हाथ खड़ा करें, आज या कल रात को, ठीक है, आज दिन में पहुँचेंगे। और भट्टी आज शाम को 5 बजे से पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में तिलक विधि द्वारा आरंभ होगी। और भट्टी के भाई बहनों के लिए डायरेक्शन तो सारे भट्टी में दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं भट्टी के भाई। अच्छा, जो भाई बहने शांतिवन से आए वो हाथ खड़ा करें। शांतिवन से या भट्टी से जो भी भाई बहने हैं, सबका सुबह का नाश्ता